छोटी सी कुटिया में रहता है और दोपहर को एक बार भिक्षा मांगने जाता है। रोज जो कुछ उसको मिलता है भोजन बनाता है, खाता है और कुछ दूसरे दिन के लिए बचा के रखता है सुबह के लिए। एक व्रता है, एक ही बार दोपहर में बनाता है, पर एक छोटी सी समस्या का सामना उसे करना पड़ता है। उस कुटिया में एक चूहा आ जाता है और वो जो भोजन रखता है दूसरे दिन के लिए सुबह के लिए, वो चूहा आकर रोज खा जाता है। तो उसने एक युक्ति निकाली, एक थाली में भोजन जो बचा हुआ रहता था दूसरे दिन के लिए जो उसको रखना था, थाली में रखता है और थाली को ऊपर टंगा देता है। पर वो चूहा बहुत शक्तिशाली है और बुद्धिमान, वो उस थाली पर कूद कर चला जाता है रोज और उस पर जो भोजन है रखा वो खा लेता है। तो ये योगी बहुत परेशान है, एक डंडा रखता है अपने पास रात को सोते समय और बजाते रहता है ताकि वो चूहा ना आए। एक बार उस फकीर का, उस योगी का मित्र उसके यहाँ एक रात के लिए रहने आता है। दोनों भोजन करते हैं, बातें करते हैं, सोने का समय होता है, परंतु ये योगी अपना डंडा लेकर ऊपर की थाली में ठक ठक ठोकते रहता है। उस मित्र को क्रोध आता है कि मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हारा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बताता है मैं क्या करूं, एक उपद्रवी चूहा है इस कुटिया में, वो आ जाता है और मेरा भोजन खा जाता है, रात को आता है। वो योगी पूछता है इतना ऊंचाई में कूद पाता है वो, कहते हैं हाँ बहुत पावरफुल, इसलिए मुझे ठक ठक करते रहना पड़ता है बीच बीच में उठ उठ के। वो मित्र पूछता है क्या तुम्हें पता है उसका बिल जहां वो रहता है वो चूहा वो कहाँ है? कहते हैं नहीं। तो कहते हैं आज हम उसका पता करेंगे। तो रात होती है, चूहा अपने समय पर आता है, भोजन खाता है, दोनों उसका पीछा करते हैं और कुटिया में ही एक जगह उस चूहे का बिल है। तो वो दोनों मिलकर चूरी से उसको खोदते हैं, बिल को देखते हैं तो पाते बिल के अंदर बहुत सारा भोजन रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ, और वो दोनों मिलकर उस सारे भोजन को निकाल लेते हैं वहां से, और वो जो बिल है उसको तहस नहस करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे, बंद कर देते थे। वो मित्र कहता है मैं एक रात तुम्हारे यहां फिर रुकूंगा। भोजन करते हैं, सोने का समय होता है, वो योगी अपना दंडा लेकर ठक ठक करने लगता है भोजन जो रखा हुआ है। ये मित्र कहता है आज कुछ करने की, ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो योगी पूछता है कि आज चूहा नहीं आएगा? वो कहता है चूहा तो आएगा पर वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। चूहा आता है, कूदने की कोशिश करता है पर वहां तक कूद नहीं पाता। रोज तो कूद जाता था एक छलांग में ऊपर तक कैसे भी करके, आज नहीं कूद पा रहा है। क्यों? क्यों? नहीं, भोजन उसे मिला है फिर भी नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? उसका खजाना लुट गया है, बेचारा अपना आत्मविश्वास ही खो बैठा है, उसका खजाना ही खत्म हो गया है। रोज जो छलांग लगाता था आज नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि हिम्मत टूट गई है अंदर से, क्योंकि खजाना लुट चुका है। और जब माया हमारा खजाना लूट लेती है तब हम भी क्या हो जाते हैं? शक्तिहीन, आत्मविश्वास से वंचित, हताश, निराश, उदास। और एक उदास व्यक्ति कभी भी उड़ान नहीं भर सकता, उदास चित्त कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हतोत्साहित हो गया है, जीवन की समस्याओं से दुखी हो गया है, कोई खजाने नहीं रहे। योग के मार्ग में चलने वाला और एक दिन ब्रह्मचर्य लुट गया, शक्तिहीन हो जाता है। खुशी का खजाना लुट गया, शक्तिहीन। समय बर्बाद हो गया, शक्तिहीन, आत्मविश्वास से वंचित। नौ खजानों का गायन है भक्ति मार्ग में, नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट शक्तियां और नव निधियां दे दी सीता जी ने, दिखाया है। ब्राह्मण जीवन में भी नौ खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, खुशी, पवित्रता, श्रेष्ठ कर्म और दुआएं। नौ खजाने हैं। इन नौ खजानों में से अगर कोई भी खजाना लुट जाता है तो फिर उड़ान नहीं भर सकती आत्मा। भोजन रखा है ऊपर पर कूद नहीं सकती वहां तक, क्योंकि दुख है खजाना लूटने का, दर्द है कि खजाना खो गया, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, खुशी नहीं रही, पुण्य कर्म नहीं हो रहे, भ्रष्ट कर्म हो रहे, पाप कर्म हो रहे, विकर्म हो रहे। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी पुण्य कर्म करने की शक्ति नहीं है। स्थिति हमारी दुर्योधन जैसी है, जो कहता है गोविंद मैं क्या करूं, मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूं सब गलत है। दुर्योधन कहता है मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे पता है सब गलत है, पर मुझे सत्य कर्म सही करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं गोविंद तू बता। पता तो सब है, क्या किसी चोर को पता नहीं कि चोरी करना पाप है? फिर भी तो करता है, क्यों? पावर नहीं है। पुण्य कर्म लुट गए, समय बर्बाद हो गया, पश्चाताप। संकल्प वेस्ट हो रहे हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ तूफान चल रहा है, खजाना लुट गया। ज्ञान गुण शक्तियां समय संकल्प खुशी पवित्रता पुण्य कर्म दुआए। कर्म ही ऐसे कर रहे हैं कि दुआएं मिल रही है लोगों की, और ये लुटने का काम करती है माया। तो इस ब्राह्मण जीवन में माया के बहुत सारे सूक्ष्म भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के रूप है। वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि समझ नहीं आता है कि ये भी माया है। और जब समझ आता है तब बहुत देरी हो चुकी है। जब गिर गए तब समझ में आया कि ये माया थी, जिसने गिराया वो माया ने गिराया। बाद में भगवान के महावाक्य है, अब है प्राप्तियों के दिन, एक समय आएगा जब होगे पश्चाताप के दिन। अंत समय में सबसे ज्यादा पश्चाताप कौन करेंगे? संसार के लोग। कौन? वो तो दुख के आंसू बहाएंगे कि भगवान आया और हमको पता ही नहीं चला, पर ब्राह्मण खून के आंसू बहाएंगे, जार जार रोएंगे, भगवान आया, उसने ये सब कहा और हमने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। अपने खजानों की रक्षा करनी है, कोई माया इसे छीन न पाए। तो इस सत्र में हम चर्चा करेंगे माया के सूक्ष्म और भिन्न भिन्न रूपों की। स्थूल तो सभी को पता है, पांच विकार, और उससे भी सूक्ष्म ब्राह्मण बनने के बाद सूक्ष्म माया प्रवेश करती है। तो ऐसे लगभग माया के 12 सूक्ष्म रूपों की हम चर्चा करेंगे। पहला अलौकिक संबंध, लौकिक अलौकिक परिवार में लौकिक संबंध, ये पहली माया है। ये ईश्वरीय परिवार है, सबका आपस में एक ही संबंध है, भाई भाई का। इस अलौकिक परिवार में लौकिकता निर्माण करना, इस अलौकिक परिवार में लौकिक संबंध स्थापित करना, ये सबसे सूक्ष्म माया है। ये परिवार इस अलौकिक परिवार में लौकिकता का आ जाना गिरावट है। अपने संबंधों को अलौकिक रखना है, भाई भाई आत्मिक। दैहिक संबंध, दैहिक रिश्ते, विशेष भाई विशेष बहन, माँ पिता जैसा है, बेटे जैसा है, और आसक्तियां उत्पन्न करना, लगाव उत्पन्न करना, अटैचमेंट परिवार के अंदर, दो बहनों के बीच, दो भाइयों के बीच, एक भाई एक बहन के बीच। जैसे परिवारों में आसक्ति होती है, वैसी आसक्ति यहां उत्पन्न हो जाना माया का रूप है। ये हम ना भूले कि इस ब्राह्मण जीवन में हम अकेले हैं, ये अकेले की यात्रा है। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की अकेले की तरफ यात्रा। इसमें सभी साथी है, पर कोई विशेष साथी यदि बनाया और उसे कुछ हो गया तो तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। इसलिए सब अपने और अपना कोई भी नहीं। इंग्लिश में कहते हैं ऑल और नन फिलोसॉफी, सब मेरे हैं और मेरा कोई भी नहीं। लौकिकता नहीं लानी है इसे। पहले भी कभी सुनाया था, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक परिवार था जिसमें माँ बाप थे और एक बच्चा था, एक लड़का उनका, और उन माँ बाप का उस लड़के में बहुत मोह था, और इतना ज्यादा मोह था, ओवर केयरिंग थे, हर चीज की चिंता करते थे, और वो बच्चा इस बात से चिढ़ गया, इतनी चिंता, ओवर केयरिंग, कहीं उसको जाने ना देते, कहीं कुछ अकेले करने ना देते, दिन रात उसके पीछे ही लगे रहते, और वो और ज्यादा चिढ़ता था। और एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध आए हैं अपने शिष्यों के साथ उस विहार में। वो जाता है, महात्मा बुद्ध से कहता है मुझे भी संन्यास लेना है, और वो सन्यासी बन जाता है। माँ बाप परेशान, लड़का गया कहाँ? पिताजी निकल पड़ते उसको ढूंढते, यहां वहां ढूंढते, बाद में पता चलता है कि वो कहता था कि एक दिन चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। पिताजी बराबर ढूंढते उस शिविर में पहुंचते हैं जहां महात्मा बुद्ध रहे हैं, और देखता है मेरा बेटा तो सन्यासी बन गया। वो खुद अपने पिताजी महात्मा बुद्ध के पास जाते, कहते हैं मुझे भी सन्यास लेना है, और वो भी सन्यासी बन जाते। माँ दो दिन इंतजार करती है, पति नहीं आया, बेटा नहीं आया, कहाँ गए? वो निकल पड़ती है ढूंढने के लिए। ढूंढते उसको पता चलता है इन दोनों ने सन्यास लिया है। वो महात्मा बुद्ध के पास जाती है, कहती है मुझे भी सन्यास लेना है, और वो भी भिक्षुणी बन जाती है। अब तीनों एक ही साथ रहते हैं, माँ, बेटा और पिता। तीनों सुबह सुबह एक साथ उठते, एक साथ ध्यान करते हैं, एक साथ भिक्षा मांगने जाते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। जो उधर कर रहे थे इधर भी कर रहे हैं। जो मोह आसक्ति और लगाव उधर था, वो मोह आसक्ति लगाव इधर भी। अलौकिक जीवन है, संन्यस्त जीवन है, उसमें वही सारा कुछ चालू कर दिया जो उधर करते थे पहले। महात्मा बुद्ध उनसे कहते ये क्या हो रहा है, आए किस लिए थे? इन आसक्तियों को तोड़ने के लिए, और यहीं पर आसक्तियां निर्माण करती। साथ साथ खाना, साथ साथ प्रवचन सुनना, साथ साथ सोना, जो लौकिक घर में चालू था वो अब खाली टाइटल चेंज हो गया है। बस कर तो वही रहे, जितना हो सके अपने आप को इस माया से सुरक्षित रखना है। अलौकिक संबंधों में लौकिकता की माया, हमारे संबंध अलौकिक रहे, भाई भाई के रहे, बस इस बॉर्डरी को क्रॉस किया कि आसक्ति होगी, लगाव होगा, और फिर आगे की माया आएगी दैहिक आकर्षण की, और वो बढ़ती जाएगी। सबसे पहली माया, और माया का सूक्ष्म रूप ब्राह्मणों के लिए जो तीव्र पुरुषार्थी है, जिन्हें बहुत तेजी से आगे जाना है, उन्हें इस माया को अपनी अंतर्दृष्टि से देख लेना है कि ये भी माया है। दूसरी माया अलौकिक सेवा की माया, नाम सेवा का है पर अंदर से अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छाएं है। नाम सेवा का चिपकारे है, नाम ब्रह्मा कुमारी का चिपकारे है, पर अंदर से कामना है मैं मेरा नाम हो। सेवा करके आए, सेवा का समाचार सुनाते हैं, वो सेवा का समाचार नहीं होता है, वो मैं का समाचार होता है। सेवा का समाचार नहीं सुनाते, मैं का समाचार सुनाते। उनके लिए अलौकिक सेवा ही माया बन गई है। सेवा में ही नाम मान के पीछे भाग रहे, सेवा में ही मैंने की, मैं करता हूं, वो निमित्त खो गया है भाव। विदेश की एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही है, डायरी में नोट करके रखनी है, बाबा टंकी है, हम सब नल है। नल अगर कहे मैं पानी देता हूं तो क्या कहेंगे? हम नल है, पानी इस नल से आ रहा है। महिमा नल की नहीं, महिमा टंकी की है। यह तो भाग्य है कि तुम्हें अवसर दिया गया। मोहम्मद रफी ने कभी कहा था, अगर खुदा चाहता तो ये आवाज किसी और हलक में भी डाल सकता था, उसने मेरे कंठ में आवाज डाली, महिमा मेरी नहीं उसकी है। कितना निमित्त भाव है, थोड़ी सी सेवा की और इतना बड़ा अहंकार। थोड़ी सी सेवा क्या कर ली और उसका एक महीना तक प्रचार, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फला किया, हमने ये किया। मम्मा डेढ़ मास तक बैंगलोर रही, वापस आई, बहुत सारी सेवाएं की। मम्मा से पूछा गया, मम्मा सेवा कैसी थी? मम्मा ने कहा, अच्छी थी, फुल स्टॉप, कोई वर्णन नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं। कैसी थी सेवा? अच्छी थी। और हमसे अगर पूछे 50 फोटो, पहले फोटो देखो फिर बात करेंगे। वो भाई था मम्मा के साथ जो गया था, उसने बताया क्या क्या किया, कोई वर्णन नहीं, फुल स्टॉप। कैसी सेवा थी? अच्छी थी। किसी भाई ने एक बाबा के महावाक्य आज सुबह सुबह भेजे, जिसमें अव्यक्त बाबा के महावाक्य है, जिसमें बाबा ने कहा है, सेवा के मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे? इस आधार, हाँ, ये मुरली है, 25th November 1995। बाप दादा बोले, मार्क्स ज्यादा लेने हैं तो स्वचिंतन करो, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों की चिंतन कर मिटाओ, परिवर्तन करो, फाइनल रिजल्ट में प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप में पहले मार्क्स मिलेंगे। फाइनल नंबर, कितनों को सुख दिया, कितने स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। भाषण अच्छे किए, सेंटर खोले, स्टूडेंट बनाए, बाप दादा ये नहीं देखेंगे। क्या कहा बाबा ने? कितनों को सुख दिया, कितने स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मार्क्स मिलेंगे। भाषण कितने किए, सेंटर कितने खोले, स्टूडेंट कितने बनाए, बाप दादा ये नहीं देखेंगे, बल्कि कितनी आत्माओं को योग्य बनाए वो देखेंगे। कोई हिल तो नहीं रहा है, वो देखेंगे। मांग कर की हुई सेवा, किसी से छीन कर की हुई सेवा, या दिखावे के लिए की गई सेवा के मार्क्स कट हो जाते हैं। जितना सेवा गुप्त और निस्वार्थ हो उतना अच्छा। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए? सेवा की पुण्य जमा हो गया, और क्या चाहिए? बाप के दिल पर नाम, जहां दिखावा है, जहां ढोंग है, जहां आडंबर है, जहां स्वार्थ है, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, करती हूं, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, अरे हमने किया क्या? अगर दादियों की सेवा देखे तो उसके सामने हमारा तो कुछ भी नहीं है। कैसा अहंकार! यज्ञ कितना संपन्न है, समय एक था जब यज्ञ में कुछ भी नहीं था, एक एक डिपार्टमेंट में एक ही व्यक्ति हुआ करता था जो कितनी सारी सेवाएं करता था। अभी तो एक एक काम के लिए 10-10 लोग हैं। अलौकिक सेवा का अहंकार, ये माया है, बड़ी सूक्ष्म माया है। इसलिए सेवाओं में क्या हो, निमित्त भाव, सेवा कर ली, अर्पित, कर्मातीत, अर्थात सेवा कर्म और कर्म का परिणाम दोनों टच न करे। सेवा की और भूल जाओ, अपने सेवाओं की लिस्ट और उसको याद करके रखना, हमने ये किया, गिरा देगा। हाँ, अगर वर्णन करने की आवश्यकता पड़े तो उस वर्णन में बहुत निमित्त भाव हो, या तो वर्णन ही ना कर। एक है हमने यह सेवा की, एक दूसरा है बाबा ने हमसे कराई। एक भाषा है मैंने की, एक है हमने की। हम शब्द बड़ा प्रोटेक्शन है। मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने ये किया, फिर मैं वहां गया, फिर मैं वहां गई। एक ये भाषा है। दूसरी भाषा है हमें ऐसा लगा, हमने वो किया, फिर हमने वो सेवा की, फिर हमने वो प्रदर्शनी की। एक ये भाषा है। भाषा में भी अंतर है। एक जगह मैं का प्रयोग है, एक जगह हम का प्रयोग है। हम में सुरक्षा है, मैं में अहंकार है। वहां पर वो सेवा अच्छी हुई, एक ये भाषा है। हम वहां गए, अच्छी सेवा हुई। एक है मैं वहां गया और वहां अच्छी सेवा हुई। इसमें अंतर है। सेवा के समाचार में सुनाते समय मैं ना आया। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यहां हूं, मैं त्यों हूं। तीसरी माया, बहानेबाजी, कारण देना हर चीज में। दादी जानकी की एक क्लास है जिसमें दादी ने कहा है, एक है झूठ बोलना, दूसरा है बहानेबाजी करना। बहानेबाजी झूठ बोलने से भी खराब है। बहन जी ने सेवा दी, ये सेवा करनी है, कहना नहीं मेरे से नहीं होता है, मुझे वहां काम है, काम कुछ है नहीं, फिर भी बहाने, इच्छा ही नहीं है करने की, हर चीज में बहाने। मुरली क्लास क्यों नहीं आते रेगुलर? बच्चों की पढ़ाई, मेहमान, ये वो, जिसको आना है वो कैसे भी आता है। जगदीश भाई मुरली सुनने के लिए वो जो कोयले की ट्रेन होती है उस कोयले के ऊपर बैठकर गए थे। एक ज्ञानामृत में आर्टिकल आया था, मुरली ना सुनने के 108 कारण। क्यों नहीं सुनी मुरली? बारिश आ गई। क्यों नहीं सुनी मुरली? मेहमान आ गए। क्यों नहीं सुनी मुरली? पेट में दर्द। क्यों नहीं सुनी मुरली? सिर में दर्द। बाबा कहते थे क्या हुआ, बच्चा क्यों नहीं आया? बाबा फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रेचर पर लेके आओ क्लास में। बच्चों की पढ़ाई, ये पढ़ाई, आज मूड नहीं है, आज आ नहीं सकता, कितने बहाने हैं, हर चीज के लिए बहाने 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 ढूंढते रहते हैं। और बहाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? झूठ बोलना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था, धार्मिक है थोड़ा, देखा बगीचा है, उसमें पके हैं आम, लाल पीले पीले आम नजर आ रहे हैं। देखता है आसपास माली कहीं नहीं है, घुस जाता है, अपनी झोली में आम भरता है और आम दोनों हाथों में, कुत्ते में माली देख लेता है और वहां पर पहुंच जाता है, कहता है आप और चोरी कर रहे हो, कमाल है आपकी, हमको, हम तो आपको बहुत धार्मिक समझते थे। वो कहते हैं चोरी नहीं कर रहा था, वो तो मैं यहां से जा रहा था, हवा इतनी तेज आ गई, तूफान की, मैं हवा के झोंके की वजह से अंदर आ गया। वो कहता है माली, कहता है वैसे तो इतना तेज तूफान इधर कभी आता नहीं है, चलो मान लिया, पर ये जो तुम्हारी झोली है उसमें जो आम है उसका क्या? वो तो कहता है झोली मेरे पास थी पर जब फेंका गया तो इसमें आम भी आ गया। अच्छा चलो वो भी मान लिया, पर ये तुम्हारे दोनों हाथ में आम है उसका क्या? वो कहता है कि हवा इतनी तेज चल रही थी तो मैंने ये दो आम ही पकड़ लिए। एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ 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 झूठ। अगर कोई सेवा दी गई और नहीं कर सकते सीधा मना कर दो, फिर नहीं तो तुम्हारे भरोसे पर बैठे रहेंगे और सेवा भी नहीं होगी। हम सोचते रहेंगे, बहन जी सोचती रहेंगे कि इनको कहा हुआ है, शाम को देखा तो किया ही है। अमृत वेले के बहाने क्यों नहीं उठ पाए? लेट सोए थे, प्रोग्राम था कोई, मम्मा 11 बजे से भी ज्यादा टाइम हो गया था तब सोई। फिर भी मम्मा का नियम था 2 बजे उठने का, फिर भी उठी। भाई बहनों ने कहा मम्मा आप तो लेट सोई, थोड़ा लेट उठना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? मम्मा ने कहा एक श्रीमत तो पहले ही तोड़ दी, अब दूसरी भी तोड़ू क्या? हमारे पास ढेर सारे बहाने अमृत वेले न करने के, मुरली न जाने के, क्लास में घर में ही मुरली सुनते हैं बैठकर, या कार में या मोबाइल पर। उस वायुमंडल में जाना अर्थात शक्तिशाली वायुमंडल में प्रवेश करना है। अपने आप को ही संकल्प देते हैं, थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, इसलिए बाबा हम कल नहीं उठेंगे, छुट्टी। बाबा से रात को ही छुट्टी ले ली, क्यों? बुखार जैसा लग रहा है। कितना बुखार है वो मत देखना, नहीं निकला तो लग रहा है ना बुखार। बस खुद ही को हम समझाते हैं बहाने पास। चौथी माया है BSNL। चौथी माया BSNL क्या है? ये BSNL ब्राह्मण संसार न्यूज लिमिटेड, BSNL। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, मधुबन में क्या हो रहा है, ये बहन का क्या हुआ, वो भाई का क्या हुआ, वो बहन पहले वहां थी अब वहां क्यों चली गई, कुछ तो है, ढूंढो, पता करो। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट नारद है ना, नारद। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। चार लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं। कौन सी चर्चा करते हैं? परचिंतन और परदर्शन की चर्चा। ब्राह्मण आज का ब्राह्मण संसार समाचार चर्चा, और चर्चा पूरी होने के बाद कल फिर मिलेंगे इसी समय, आ जाना। एक भाई, एक कुमार हमसे कह रहा था हमारे सेंटर पे देखो कैसी माया आ गई है। हमने कहा क्या? दो तीन भाई है जैसी मुरली पूरी हो जाती है क्लासरूम में बैठते और पॉलिटिक्स की चर्चा चालू कर देते, झगमोई झरमोई, किसी का चरित्र हनन, बहुत सारी बातें निकल जाती है मुख से, इधर की बातें उधर की बातें, ये क्या वो क्या करता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। टाइम वेस्ट। इस माया से अपने आप को बचाना है। इंग्लिश में कहावत है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखना है। दूसरा क्या करता है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम देखो। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ गया, उसके तीसरे दिन फिर आ जाता है, अपने शिष्यों से मिलता है। उसका एक शिष्य जीसस से पूछता है लॉर्ड डू यू लव मी, हे प्रभु क्या तुम मुझसे प्रेम करती। ये वही शिष्य है जिसने तीन बार जीसस क्राइस्ट को नकार दिया था। जब जीसस क्राइस्ट को पकड़ के लेके गए, वो भी अंदर गया, उसको पूछा क्या तुम इस आदमी को जानते हो, वो कहता है मुझे नहीं पता ये कौन है। उसका अनन्य शिष्य कहता है, फिर से पूछते क्या तुम उसे जानते हो, कहते मैं नहीं जानता। तीसरी बार फिर पूछते दूसरी जगह, तुम जानते हो, कहते मैं नहीं जानता। तीन बार नकार दिया और फिर रोते बैठता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरा गुरु था उसको ही मैंने मना कर दिया। वही शिष्य अब बाद में पूछता है लॉर्ड डू यू लव मी, जीसस क्राइस्ट उससे पूछता है कि डू यू लव मी, वो कहते हैं हाँ प्रभु। फिर से पूछता है डू यू लव मी, वो कहते हैं हाँ। फिर से पूछता है डू यू लव मी, हाँ। पर दुखी होता है कि जीसस मुझे बार बार क्यों पूछ रहा है कि क्या मैं उससे प्रेम करता हूं, शायद मेरा प्रेम कम है इसलिए तो पूछ रहा है। और वहां पर एक प्रसंग आता है, पीटर जिसका नाम होता है, वो पूछता है ये जो पीछे से आ रहा है जॉन, हे प्रभु इसका आपसे आप इससे कितना प्यार करते हो। जीसस कहता है तुम्हें क्या करना है, वो मेरे और उसके बीच का है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, मैं उससे कितना प्यार करता हूं तुम्हें क्या करना है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम से काम रखो। ना ताक जोक, इधर क्या, उधर क्या, इधर की बातें, उधर की बातें, ये बातें, वो बातें, इसे कहते हैं ब्राह्मण संसार समाचार, BSNL। उसके बाद में पांचवी माया, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधाएं। इतना डूबे हैं सुखों में और सुविधाओं में कि तपस्या ही खो गई है। खाली सुविधाएं चाहिए, सुख चाहिए। वो दादियों ने कैसी तपस्या की थी यज्ञ की शुरुआत में, बेगरी पार्ट में क्या था? कुछ नहीं था। वो दाल थी जिसमें केवल पानी रहता था, दालें थोड़ी सी। तपस्या अभाव में की जाती है। साधन और सुविधाओं के शैया पर मत सो जाना। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अंदर से वैराग्य हो, सब कुछ देखते हुए मन विरक्त हो, कुछ भी नहीं चाहिए, एक सूक्ष्म वैराग्य। इस संसार को देखते हुए जैसे देख ही नहीं रहे, आंखें कहीं पर भी नहीं डूबती। ये लू, वो खरीदो, ये चाहिए, वो चाहिए, आंखें डूबती। नई जगह जाओ तो चीजों को देखते हैं और आंखें डूब जाती है। इच्छाएं उत्पन्न होती है, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, ये भी लू, वो भी लू। तुम्हें बस एक ही इच्छा हो, विश्व कल्याण की, बस और कोई इच्छा नहीं। एक ही इच्छा है बाप समान बनने की, और कोई इच्छा नहीं। एक ही इच्छा है सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व संतु निरामय। एक ही इच्छा है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बहुतों का कल्याण हो, बहुतों की सेवा हो, बस व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं। बिना वैराग्य के तपस्या नहीं हो सकती। जो दिन रात भोग विलास में डूबे हुए हैं, तपस्या कैसे करेंगे? शरीर को संवारने में लगे हुए हो, तपस्या कैसे करेंगे? इस शरीर को तपाना है, एक एक इंद्रिय शीतल हो जाए। बाबा के महावाक्य है, इंद्रियों में दुर्गंध है, छींची है एक एक कर्मेंद्रिय, उसको तपाओ। भट्टी अर्थात आग, आग है आग। हमारा जीवन एक ज्वाला भवन बन जाए, ज्वाला भवन जिसमें हम तपे, सुख सुविधाओं की माया। उसके बाद में अगला डिजिटल माया, सबसे बड़ी माया है वर्तमान की। हर व्यक्ति उसमें डूबा हुआ है। ये बहुत अच्छा साधन है सेवा का, सर्वोत्तम साधन, पर यह आग की तरह है। इससे रोटी भी पकती है तो घर भी जल जाएगा, चरित्र का भी सर्वनाश होगा। इसी मोबाइल से, इसी इंटरनेट से, इसी सोशल मीडिया से, इसी टीवी से। गूगल का एक बहुत बड़ा अफसर, गूगल कंपनी का जो चलाने वाले, उसने लिखा है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। इंटरनेट पर बिना लक्ष्य के जाना ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है। बिना लक्ष्य के युवक बैठते रहते हैं, एक क्लिक ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। जो लक्ष्य है, जाओ डिजिटल दुनिया की अज्ञात गलियां भटका देती है। गए, जो ढूंढना है ढूंढा, वापस गए, क्लास सुननी है उतनी क्लास सुनी और वापस। आग में हाथ डालने जैसा है, पर उस आग में हीरा रखा है, निकाल के वापस इधर उधर किया तो जल जाएगा। डिजिटल माया है सबसे बड़ी माया वर्तमान की, हर व्यक्ति उसमें डूबा है और मुख्य रूप से युवक और मुख्य रूप से छोटे छोटे बच्चे। कौन सी माया है छोटे बच्चों के लिए, माताओं को पता होगा, वीडियो गेम्स। किन किन के बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, माताएं जरा हाथ खड़ा करेंगे, बहुत होंगे। छोटे छोटे बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं। आतंकवादियों का इंटरव्यू लिया गया था कभी, उनको पूछा था बताओ तुमको बचपन में कौन से गेम अच्छे लगते थे, वो कहते थे वीडियो गेम्स, इधर से मारा, इधर से मारा, इधर से उड़ाया, उधर से उड़ाया, ये गेम्स खेलते थे बचपन में। और फिर धीरे धीरे यही खेलने की इच्छा हुई और आगे जाके बंदूक हाथ में आ गई। बचपन में प्लास्टिक की बंदूकें थी, गेम्स देखते थे, इधर से कार उधर से कार, और अभी मनुष्य को मारने में मजा आता है। वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग ही करते रहते हैं। एक बी के भाई कह रहा था मेरी युगल, वो भी ज्ञान में है, पर जब देखो तब शॉपिंग। अभी पुरानी साड़ी खोली भी नहीं है, दूसरी साड़ी बाय आ गई दो दिन के बाद। ऑनलाइन सब आता है, ऑनलाइन शॉपिंग, दिन रात परचेस करते रहते हैं चीजों को, परचेस। कौन सी चीज नहीं है, किचन वाली कौन सी चीज नहीं, अच्छा ये हमारे पास ये वाला मिक्सर नहीं है, बाय। ऑनलाइन शॉपिंग, दिन रात परचेसिंग परचेसिंग परचेसिंग, एडिक्शन बन गया है परचेसिंग, ऑनलाइन परचेसिंग। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, सारा देखते हैं इंटरनेट पर, ये पसंद आ गया बाय आ गया। डिजिटल रावण, फिर है ऑनलाइन न्यूज, न्यूज ही पढ़ते रहते दिन रात, किसने क्या किया, अच्छा इसने ऐसा कहा, अब इस पार्टी ने ऐसा कहा, वो पार्टी क्या करेगी, बस दिन रात। ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन वीडियो गेम्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, टीवी। अच्छा सीरियल कौन कौन देखता है, जरा हाथ खड़ा करेंगे माताएं, एक दूसरे को नहीं देखना, खाली सामने देखो, नहीं तो बाजू वाले हाथ नहीं खड़ा करेंगे। आजू बाजू नहीं देखो, खाली सामने देखो बस। आज का सीरियल देख लेते बाद, कल से नहीं देखेंगे, पर आज का सीरियल ही एंड ही वहां होता है क्लाइमैक्स, आगे क्या होगा उत्सुकता है, क्योंकि एंड वही होता है, बस एक अंधेरी छाया है, वो कौन है, अब आगे का देखो तब पता चलेगा। मधुबन में वो कौन, एक भाई था, 9 बज गए, चलो चलो जल्दी चलो, क्या हुआ, अशोक भाई की क्लास है। कौन अशोक भाई, सम्राट अशोक, सीरियल एडिक्शन है, सीरियल एडिक्शन। एक बार देखा कि जब तक पूरा नहीं हो जाता जी नहीं भरता है, आज देखा अब कल आगे क्या होगा, ये तो देखना ही है। दिन रात टीवी टीवी टीवी, एडिक्शंस टू सी टीवी। उसके बाद में फिल्म्स, नई नई फिल्में, ये फिल्म में क्या है, वो फिल्म में क्या है, फिल्म के साथ जुड़े हुए एक्टर्स और उनके जीवन में क्या हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट। माया है, डिजिटल माया है, स्वयं ही डिसाइड करना है, स्वयं ही सोचना है, मैं किस ओर जा रहा हूं, जा रही हूं। उसके बाद में अगला ब्राह्मण जीवन की तीव्र पुरुषार्थियों के लिए माया है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और फिर जब पूरी नहीं होती तो दुखी होते। बड़ी बहन जी से ज्यादा अपेक्षाएं, छोटों से अपेक्षाएं, साथियों से अपेक्षाएं, अपनी पत्नी से बहुत सारी अपेक्षाएं, पति से अपेक्षाएं, बच्चों से अपेक्षाएं, मित्र संबंधियों से अपेक्षा, अपने बॉस से अपेक्षाएं कि ये मुझे ऐसा करे, ये मुझे समझे। और समझता कोई नहीं, अपेक्षाएं भंग होती है, दुखी होते। ब्राह्मण जीवन में एक पॉलिसी लेनी है, LIC की पॉलिसी है, सब लेते हैं ना, वैसी एक पॉलिसी इधर है, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, रखेंगे तो दुखी होना पड़ेगा। हमने बहुत सेवा की, सेवा की, सेवा की, पर हमारा तो नाम ही नहीं आया कहीं, दुखी हो। कम से कम स्टेज पर हमारा नाम तो बोलते, ये भाई कितनी सेवा की। स्तुति होती है तो खुशी होती है ना। क्या होता है स्तुति होने के बाद, क्या होता है? कोई हमारी तारीफ कर रहा है, क्या होता है अंदर अंदर, क्या होता है? गदगद। और क्या होता है, और क्या होता है, क्या होता है बोलिए? कोई तारीफ ही कर रहा है हमारी तो क्या होता है? हाँ, आकर्षण, क्या होता है? और सुनने की इच्छा होती है। कोई आके कहते कि तुम में बहुत ही अच्छा ये गुण है। कोई आके कहते तुम तो एकदम योगी जैसा लगते हो। और क्या क्या लगता हूं? उसमें भी एडिक्शन है, प्रेज एडिक्शन। अगर कोई थोड़ी सी ग्लानी कर दे और अपमान कर दे तो फिर दुख। कोई आके कान में कह दे कि तुम में अहंकार बहुत है, ऐसा हमने सुना है। हम नहीं कह रहे, क्या कहते हैं? सुनने में आया है। क्या करेंगे फिर? दुख होगा फिर। लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं। एक्सपेक्टेशंस, इससे अपेक्षा है, उससे अपेक्षा है। जितनी ज्यादा अपेक्षा है उतना ज्यादा दुख। उसके बाद में अगली माया है फैशन, फैशन की माया। कौन सी फैशन? गहने, पाउडर, सेंट, टैटू, रंगीन रंगीन अलग अलग कपड़े, हर दिन नए नए, ये सब फैशन की माया है। विनोबा भावे ट्रेन से जा रहे थे, एक महिला ट्रेन में बैठी थी, उसने गजरा लगाया। गजरा पता है ना, बहनों को ज्यादा पता है, माताओं को गजरा। विनोबा भावे उससे पूछते, क्या ये गजरा तुमको दिखता है? क्या ये गजरा तुमको दिखता है? वो कहती है, नहीं। तो क्यों पहना है? किस लिए पहना है? दिखाने के लिए। सेंट लगा देते हैं, बहुत सेंट लगाते हैं। हम देखते हैं मधुबन में कुटिया में बैठते हैं, अचानक 3 बजे कोई एंट्री होती है, किसी माता की, किसी बहन की, इतना सेंट कि जो बैठे हो गए बेचारे परमधाम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। कौन आ गया महफिल में? ये कौन आया महफिल में? कोई सूक्ष्म वतन से गिरता होगा धड़ाम, इतना सेंट सुबह सुबह 3 बजे। नासा फुटों में अंदर घुस जाता है पूरा, सेंट ही सेंट, डिओड्रेंट सेंट, क्या क्या लगाते हैं। कहते हैं इससे ना बदबू नहीं आती है। एक व्यंगात्मक बात है श्रृंगार के बारे में। श्रृंगार कौन करते हैं? जो सुंदर है उसे श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं, अर्थात जो श्रृंगार कर रहे हैं वो सुंदर नहीं है, इसलिए श्रृंगार की आवश्यकता पड़ रही है। हमारा श्रृंगार पवित्रता है। बाल काले होने चाहिए, डाय अगर किसी को पता चल गया तो बस गए। फैशन की माया। व्हाइट में भी फैशन, व्हाइट में फैशन, अलग अलग व्हाइट, उसकी फैशन। जो उधर देखा फिल्म एक्टर फिल्म एक्ट्रेसेस करते हैं वही करते हैं इधर संसार के लोग। अजीब अजीब फैशन है, फटे पुराने यहां रहता है वो भी फैशन है, फटा नहीं है वो फैशन। ब्राह्मण परिवार में भी इतने मोटी मोटी जाली वाली शॉल, उससे तो ठंडी भी नहीं जाती, फिर किसके लिए? होते हैं ना इतने बड़े बड़े होल होते। ढेर सारी फैशन है, अलग अलग प्रकार की फैशन है, फैशन की माया। उसके बाद में अगला भोजन की माया। सुबह उठते ही खाऊं खाऊं म्याऊं म्याऊं, क्या खाऊं किसको खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, खाऊं खाऊं करते रहते हैं बस। गाय होती है ना उगाड़ती है, बाबा ने कहा ज्ञान की तरह ज्ञान को उगाड़ना है, या भोजन को उगाड़ते रहते हैं निरंतर, मुंह में कुछ ना कुछ होता है। अवतरण डायमंड हॉल, बाबा बैठा हुआ है, भगवान को अभी भोग नहीं लगा, अचानक से सुगंध आती है सैंडविच की, कहां से खुला, संतरे की सुगंध, इधर भोग लग गया पहले, भगवान बाद में। डायमंड हॉल में अपने बैग सब में टोलियां भर भर के अंदर, मुरली 10 मिनट चालू हो गई, इधर से निकाला चालू खाना। भोजन के कुछ नियम है, पहला हंगरलेस ईटिंग, जब भूख है ही नहीं तो खाना नहीं है, फिर भी खाते रहते जबरदस्ती। दूसरा ओवर ईटिंग, अधिक खाना, मनुष्य की आवश्यकता बहुत कम की है, वो जितना खाता है उससे अपना आधा पेट अपना भरता है और आधा डॉक्टर का। बड़े रहम दिल, डॉक्टरों की भी कमाई होती रहे, कैसे होगी, हम बीमार पड़ेंगे तो। ओवर ईटिंग, खाते ही रहता है खाते ही रहता है खाते ही रहता है। संसार में लोग लंबा लंबा समय उपवास करके भी स्वस्थ रहते थे, और उपवास सबसे बड़ी औषधि है सभी रोगों के लिए, सबसे बड़ी औषधि। पर उसकी गलत मान्यताएं और धारणाएं बहुत है, कमजोरी आती है, ये आती है, वो आती है, ऐसा कुछ नहीं है। उचित निर्देशनानुसार किया जाए तो वो उपवास, उपवास का संबंध भोजन से कम आत्मा की उन्नति से जाता है। उपवास आत्म संयम है, आत्म अनुशासन। तीसरा जल्दी जल्दी खाना। चौथा जो नहीं करना है, क्रोध में भोजन स्वीकार करना, डिस्प्लेजर के साथ, कंप्लेंट के साथ, इसमें नमक कम है, इसमें वो कम है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, उसमें वैसा है। पांचवा भोजन को वेस्ट करना। मधुबन में देखते हैं हम, इतनी सारी थाली भर कर ले लेते हैं भाई बहने जो पार्टियों में आते हैं, और फेंक दिया। चाय पे एक ग्लास भर के लेते हैं, आधा पीते और रख देते हैं। 16 फरवरी 1988 अव्यक्त वर्ण, ये ब्रह्मा भोजन है, दुख भंजक है, दुआ और दवा इसमें समाई हुई है, यज्ञ के भोजन का एक एक कणा मोहर के समान है। मधुबन जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, पाप कर कर आते हैं वहां से, यज्ञ का भोजन ही वेस्ट कर देते। जो पता है चीज हम नहीं खाते फिर भी थाली में लेते, आधा खाते आधा छोड़ देते, चावल छोड़ देते, दाल छोड़ देते, रोटियां छोड़ देते, जब पता है इतना खा ही नहीं सकते तो क्यों लिया फिर, कितना वेस्ट करते हैं भोजन, दूध कितना वेस्ट करते हैं, पानी, सब कुछ वेस्ट। ये भी एक माया है, और इसमें तो बहुत सारी चीजें। अगला भोजन की बात, भोग लगाया हुआ भोजन। कितनी माताएं भोग लगाती है घर में, हाथ खड़ा करेंगे, और बाकी जो बची हुई है वो वो कहती है पहले हम भोग खाएंगे, भगवान तुम बाद में खाना, पहले हम। जो भी भोजन बनाते हैं 24 घंटे में एक बार घर गृहस्थी में रहने वाले भोग जरूर लगाना है। भगवान प्रेम का भूखा और भावना का प्यासा है, भावना का भूखा प्रेम का प्यासा, ऐसा कहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, मुझे पत्र पुष्प फल और जल तोयम अगर कोई अनन्य भाव से दे तो मैं उसे प्रेम सहित स्वीकार करता हूं। मुझे तुम्हारे पंच पकवान 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। साकार महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा। बाबा साहूकारों की महफिल में नहीं आते जहां पर 56 प्रकार के भोग है। बाप गरीब की झोपड़ी में आते हैं जहां सूखी रोटी बनती है। प्रेम चाहिए उसे। जो भोजन हम खाए वो भोग लगाया हुआ हो, जो माताएं भोग नहीं लगाती आज से या कल से भोग लगाना चालू करेंगे। और भाई कितने हैं जो खुद भोजन बनाते हैं? कम। जो नहीं भी बनाते वो उसे अनन्य भाव से अर्पित करे, दृष्टि दे और फिर स्वीकार करे। उसके बाद में भोजन के लिए अगली बात, किस पैसों से भोजन कमाया जा रहा है। भाइयों के लिए ये पॉइंट है, अगर किसी का शोषण करके भोजन बना रहे पैसा आ रहा है, अगर किसी दो नंबर की कमाई से वो भोजन आ रहा है, अगर किसी को पीड़ा देकर वो भोजन पैसा कमाया जा रहा है, तो ऐसा पैसा जो भोजन जिससे बन रहा है वो भोजन कभी भी शक्ति नहीं भरेगा। अगर वो भोजन जो पैसा कमाया जा रहा है केवल भाग रहे पैसों के लिए, पागल है सुबह से रात तक, भगवान की याद है ही नहीं कर्म करते समय, बिजनेस में दुकान में इतने लगे हुए हैं पैसों के पीछे, फायदे के पीछे, कि भगवान तो कहीं है ही नहीं। ऐसा जो पैसा आएगा घर में और उससे जो भोजन बनेगा वो कभी शक्ति नहीं देगा। ये भी एक माया है, भोजन की माया। तो भोजन भी माया बन सकती है। कितने हो गए? कितने हुए? 10, 8। किसी के 8 हो गए, किसी के 10 हो गए। ऐसे कैसे हो गए? उनके पास दो माया ज्यादा आ गई होगी जिनके 10 हो गए। अगली माया है आलस और अलबेलापन। आलस, आज नहीं कल, आज करे सो आज कर, अब करे सो आज कर, आज करे सो कल, पता नहीं कल शायद करना ही ना पड़े। अच्छा ही है ना, शायद कल करना ही ना पड़े। अमृत वेला न उठना आलस्य है, मुरली चिंतन न करना आलस्य है, सेवाओं में रुचि न दिखाना आलस्य है, अमृत वेला नुमा शाम का योग मिस करना आलस्य है, रात को सोते समय थक गए और सो गए आलस्य है, चाट न देना आलस्य है, मधुबन में न जाना आलस्य है। कहते क्या जाना है, घर पे देख लेंगे, अब तो बाबा आते ही नहीं, कईयों ने आना ही बंद कर दिया। ये भी आलस्य की निशानी है, अपने आप को आलस्य से मुक्त करना है। और आलस्य से मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, जागरूकता चाहिए। समय कौन सा है इसका भान, ये वो समय चाहिए। जो सुबह उदाहरण दिया था, दो दिन बचे हैं, दो दिन के बाद एक ऐसी माया आने वाली है तुम्हारे जीवन में, ऐसा संकट जो कभी सोचा नहीं था। तैयार करेंगे ना अपने आप को, फिर ऐसा किसी ने बोल दिया था। एक युगल थे हम जब मुंबई में थे, हमारा जो हॉस्पिटल है वहां पर BSES सर्जन है और वो भी डॉक्टर है मैडम, उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजा डेंटल, दांत का डॉक्टर बनाने के लिए। एग्जाम पूरी हुई बेटे की, सुबह उसने शायद फोन करके बताया आज एग्जाम पूरी हुई, सब अच्छा हुआ, सब अच्छा रहा, और रात को फोन आया 7 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया, सीरियस नहीं है, डेथ, मर गए ऑन द स्पॉट। अभी अभी बात किया थोड़ी देर पहले, शाम को फोन आया, वो गया, सीरियस भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए, वहीं पर डेथ। फोन करते करते ही पिताजी शॉक में चले गए, शब्द ही नहीं, सुन हो डम, कुछ बोलने को ही नहीं रहा। सदमा, ऐसा आघात, कुछ बोल ही नहीं रहे। इकलौता बेटा, कैसी भी परिस्थिति अचानक आ सकती है, जो कभी सोची ही नहीं थी। क्या हम तैयार हैं? जागरूकता, अगला उदासी, अगली माया है उदास मन, दुखी है अंदर से, कुछ करने की इच्छा नहीं, रात रात भर नींद नहीं आती, या तो नींद ही करते रहते हैं, दोनों चीजें उदासी। किसी किसी को रात रात नींद नहीं आती और किसी को किसी को दिन रात नींद आती है, वो भी उदासी, उदासी भी माया है। अपने आप को देखना है, मेरे अंदर कहीं डिप्रेशन तो नहीं है, और है तो उसका तुरंत इलाज कराना है डॉक्टर से या काउंसलिंग से। कई बार काउंसलिंग काम नहीं करती है, मेडिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कुछ महीने तक दवाइयां लेनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेन में कुछ केमिकल्स है खुशी वाले, वो जब कम हो जाते हैं उदासी रहती है। कोई कारण नहीं है उदासी का, सब अच्छा है, कोई दुख देने वाला नहीं है, सब बात मानते हैं, सब आज्ञाकारी है, वैभव संपन्नता है, पर उदासी है। इंडोजीनियस डिप्रेशन कारण नहीं पता, पर उदास है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सुबह उठो तो जीवन मृत्यु जैसा लगता है। हमें तो इतना शौक हुआ, अभी 3 दिन पहले एक कन्या एकदम सामने आ गई और कहने लगी, मैंने 2 बार आत्महत्या का प्रयत्न किया है, नहीं हुआ। भाई जी, आप मुझे बताएंगे आत्महत्या कैसे करना है? हमने कहा व्हाट? और बहुत सीरियस बैच लगा हुआ, 2 बार मैं सफल नहीं हो पाई, मुझे प्लीज मार्गदर्शन कीजिए ना। दुखी है आत्माएं अंदर से, दुख का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिखाई देता है, पर उदास है। क्यों उदासी है? जरूर किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, जरूर आत्मा सोई है, उतनी जागरूकता नहीं है, जरूर कोई गहरा चिंतन चालू है अंदर ही अंदर। अपने बचपन में माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, वो अभी तक याद है बातें, स्कूल में बाकी बच्चे चिढ़ाते थे, अभी तक याद है। लौकिक में जिससे प्यार था उसे किसी और से शादी कर ली और फिर हमको ज्ञान मिल गया, पर उसको भूले नहीं अभी तक। भगवान मिल गया, 30 साल हो गए, पर वो पहला पहला प्यार अब तक इधर घर किए हुए हैं। बहुत सी बातें, अपने आप को ही चेक करना है, अपने आप को देखना है, दुखी क्यों हूं? बच्चों के कारण दुखी, हम चाहते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाए, पर उनके लक्षण तो कुछ और हो, वो तो जिद कर रहे हैं मुझे शादी करनी ही। छोटे छोटे बच्चे थे, संदली पर बैठकर मुरली सुनाते थे, छोटे छोटे थे, दादियों की गोद में चले जाते थे, सोचते थे कि ये बहुत योगी बनेंगे, और जैसे जैसे बड़े हुए और कुसंग में चले गए, आज नॉनवेज खाते हैं। वही सारे बच्चे जो बाबा कुछ बचपन में खत लिखते थे, चिल्ड्रन प्रोग्राम में आते थे, ओम शांति भवन और शांतिवन की डायमंड हॉल की स्टेज पर जिन्होंने प्रोग्राम किए, आज है ही नहीं, कहाँ चले गए? माया खा गई, और माँ बाप दुखी है। तो क्या माँ बाप को दुखी होना चाहिए? हर एक का भाग्य है, हर एक अपना भाग्य लेकर आया है, उसका उतना ही भाग्य था बस, अब कुछ नहीं कर सकते। जबरदस्ती करोगे तो और ज्यादा करेगा। कह रहा है ना शादी कर दो, करा दो शादी, छोड़ दो उसको। इतने सारे कुमार, अभी अभी एक कुमार ने हमने देखे, एक कुमार के ढेर सारे शादी के फोटो भेजे उसको। वही कुमार जो चिल्ड्रन प्रोग्राम में दादी ने पूछा था सभी दादियों के नाम, किन किन बच्चों को याद, किसी ने एक बताया, किसी ने दो बताए, एक कुमार था जिसने 50 दादियों के नाम गिनाए चिल्ड्रन प्रोग्राम में। आज वही चतुर्भुज बन गया, ठीक से शायद सुना नहीं। बाबा ने कहा था सतयुग में उनको लगा शायद यही बनना है, इसीलिए श्रीमत का पालन कर लिया। तो ये भी एक माया है। उदास, अपना डायग्नोसिस खुद करना है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये जो हो रहा है ये उदासी के लक्षण है। मन नहीं लगता, भोजन करने की इच्छा नहीं, या बहुत ज्यादा खाते रहना, सोना नहीं या बहुत सोते रहना, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, उठने की इच्छा नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, रोना आना, आंसू, बात बात पे रोते आते, रोना। एक आत्मा आई थी ओपीडी में, हमने पूछा क्या तकलीफ है, उसने कहा आंसू आते। हमने कहा अच्छा कितनी बार, उसने कहा 33 टाइम्स पर डे, गिन के रखे 33 बार हर दिन रोना आता है। क्यों रोना आता है, किसने कुछ कह दिया, रोना। आंसू तो यहीं रखे हैं, बस बटन दबाने की देरी है। बाबा के महावाक्य है, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। हमारे यहां एक बहन है, वो कहती है हमारी आंसुओं की टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप भी उसे सुखा नहीं सकती। इतने आंसुओं का स्टॉक हमारे पास है, जरा किसी ने कुछ बोल दिया, गंगा जमुना बहना बहाना चाचा। तो ये भी माया का एक रूप है, उदासी। उसके बाद कितने हुए, हो गए 12, 11। एक लास्ट लेके पूरा करते हैं, डिपेंडेंसी, निर्भरता, डिपेंडेंसी का संस्कार। स्वतंत्र नहीं है आत्मा, निर्भर है। पहला शारीरिक निर्भरता, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए किसी की आवश्यकता है, खुद नहीं कर सकते, जितना हो सके हम आत्मनिर्भर रहे, ऐसा हमारा स्वास्थ्य रहे कि किसी लाठी की आवश्यकता ना पड़े, किसी को बैसाखी ना बनाना पड़े, ऐसा अपने आप को रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे 93 की उम्र में, कितना अनुशासन रहा होगा जीवन भर। दूसरा भावनात्मक निर्भरता, इमोशनल डिपेंडेंसी। हमारे इमोशंस को दूसरा कंट्रोल करता है, उसने चाहा हम खुश रहे, वो उधर से बटन दबाता है खुशी, हम खुश हो जाते, वो उधर से बटन दबाता है दुखी हो जाओ, हम दुखी होते। हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दिया है, वो कंट्रोल करता है हमारे मूड को, इमोशंस को, भावनाओं को, ये निर्भरता है। तीसरा इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, कोई भी बुद्धि वाला काम दिया गया हम खुद नहीं करते, कहते दूसरों को ढूंढो। किसी ने कहा कि तुम एक आर्टिकल लिखो, ये न्यूज़पेपर में देना है, अरे बाप रे हमसे तो नहीं होगा, ये उसको दो, ये टाइप करना है हमको तो नहीं आता है, उसको दो। बुद्धि वाले काम तुरंत सौंप देते दूसरों को, तुमको एंकरिंग करनी है, अरे नहीं हमने कभी कही नहीं। तुमको अकाउंट्स देखना है, स्टैटिस्टिक्स देखना है, ये हमको पता नहीं। क्यों नहीं पता, सीखो, सीखने से हर कुछ, हर चीज सीखी जा सकती है। मोबाइल, माताओं की तो कमाल होती है उधर पांडव भवन में, मेडिटेशन हॉल में, अमृत वेला योग चालू है, किसी माता का मोबाइल बजता है जोर से, पहले तो उसे पता ही नहीं रहता है मेरा बज रहा है करके, दूसरे बताते हैं तुम्हारा बज रहा है, और फिर पर्स, फिर उसमें कौन से खाने में है वो भी नहीं पता, चैन खोलना चालू है, इसमें खोलू उसमें खोलू, फिर मिल गया, अब मिलने के बाद कौन सा बटन दबाना वो भी नहीं पता उसको, तब तक रिंग चालू है जोर जोर से। फिर कोई कहता है ये बटन दबाओ, दबाती है, उसके बाद में हेलो उसका आवाज, लोग कहते बाहर जाओ, फिर बोलते बोलते बाहर। अब क्या करे बात बेचारी, बेटे ने फोन लेके दे दिया और भेज दिया मधुबन। पर सीख तो सकते हैं, सीखना ही नहीं है कैसे इसको ऑपरेट करना, ऑपरेट ही नहीं करना है तो रख दो ना, योग के कमरे में क्यों लेके आते हैं, मोबाइल बजते रहते हैं। डिपेंडेंसी वो भी इंटेलेक्चुअल। अगला है सोशल डिपेंडेंसी, सामाजिक रीति से बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना लोगों पर। और लास्ट है आध्यात्मिक डिपेंडेंसी, जब भट्टी का प्रोग्राम होगा तब हम योग करेंगे, जब मधुबन से कोई आएगा, जब पांडव भवन जाएंगे तब योग करेंगे, तब प्लानिंग करेंगे, बाकी कुछ नहीं, अपने हिसाब से कुछ कुछ। अपनी भट्टी रोज खुद करनी है, खुद ही प्रोग्राम बनाना है भट्टी का, खुद ही अपने आप को प्रोग्राम देना है कि आज मेरा शाम को 6 से 8 बजे तक योग का प्रोग्राम। किसी ने बताया नहीं, किसी ने कहा नहीं, मैंने अपना बनाया। कहाँ करनी है? अपने ही घर में जहां लौकिक में रहते हैं बस। आज मेरी भोजन की भट्टी है, 3 घंटा भोजन बनाना है, वो 3 घंटा मेरे योग के होंगे। एक एक चीज सामग्री डाल रहे हैं बाबा की याद में, तेल सब कुछ याद में डाला जा रहा है, दृष्टि दे देकर। भोजन बनाने की क्रिया को योग बना देना, भोजन खाने को योग बना देना, अपनी व्यक्तिगत भट्टी स्वयं करनी। तो डिपेंडेंसी भी एक माया है। जितना हो सके स्वतंत्र हो जाओ, जितना हो सके इस मार्ग में अकेले ही चलना है। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। सभी अलर्ट होके बैठेंगे।
काम लाएगा ये दुनिया का मेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। जाने वाला अभी अभी, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, दुनिया खिलौना जैसे बालक का खेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तू जो कहे के मैं हूँ झूठी है बात तेरी, वो ही बनाने वाला वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने दो दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी करेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला।